उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है सपने हो जाते हैं धूल क्या बात करें सपनों की मेरे साथी तेरी दुनिया ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है
सभी स्थिर मन एकाग्र शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त वायुमंडल में अलौकिक मौन स्थिरता मैं एक चैतन्य आत्मा हूं संसार के सभी विचार चिंताएं बातें इन सब से परे एक अलौकिक मौन की अवस्था आबू की पहाड़ियों पर स्थित मैं ऊंचाई से अपने जीवन को देख रहा हूं किस ओर दौड़ रहा हूं किस ओर भाग रहा हूं किस तरह का ये जीवन है कहां से इस जीवन की शुरुआत की थी और कहां पहुंचा हूं क्या जीवन का लक्ष्य मैंने पा लिया पर्वतों के शिखर पर स्थित मैं ऊपर से सब कुछ देख पा रहा हूं। अपने ही जीवन को, भागती दौड़ती जिंदगी को, संपूर्ण साक्षी भाव और एकाग्रता से कहीं ऐसा तो नहीं कि भागते भागते इतना दूर निकल आया हूं कि जो करना था और जो पाना था वही रह गया। अपनी व्यस्त दिनचर्या पर एक नजर, अपना घर, ऑफिस, क्लिनिक, रोज का ट्रैवलिंग, रोज की वही दिनचर्या, क्या यही जीवन का लक्ष्य है या जीवन की गहराई में कुछ और छिपा है? जीवन के अनंत सागर में मैं चेतना कहीं खो तो नहीं गई? नियति ने, भाग्य ने एक स्वर्णिम अवसर मुझे फिर से दिया है रुकने का और अपने आप को देखने का। ये आपाधापी, ये अस्थिरता, क्या इससे भी परे कोई जीवन है? अब तक का सारा जीवन मुझे सब दिखाई दे रहा है और एक आशा जग रही है कि यह एक और दिनचर्या भी हो सकती है जो संपूर्ण तनाव से मुक्त, लाइट और खुशनुमा हो। आबू की इन पहाड़ियों पर आकर, अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच न मालूम मन क्यों शांत हो गया है। इस पवित्र प्रांगण में बुद्धि स्थिर हुई है और ऐसा लग रहा है कि कोई परिवर्तन होने वाला है। जीवन में एक आमूल क्रांति का आगाज होने वाला है और इसी संकल्प से मैं अपने आप को तैयार करता हूं और नई शुरुआत के लिए मन को तैयार करता हूं। ओम शांति। एक मेडिकल कॉलेज में एक बार एक प्रोफेसर आते हैं और वो कहते हैं कि आज मेडिकल की बातें न कर कर मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ और फिर कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। और वो कहता है कि एक बहुत बड़ा जहाज था और अचानक समुद्र में तूफान आने के वजह से वो जहाज डूबने लगा। कप्तान ने कहा कि जल्दी जल्दी जो लाइफ बोट से छोटी छोटी बोट उसमें सभी कूद जाए और अपने आप को बचाए, क्योंकि बोट, वो जो जहाज है, अब किसी भी वक्त अब डूबा तब डूबा। सभी कूदने लगते हैं और एक यंग कपल, दाम्पत्य, जो बोट वहां आती है लाइफ बोट, वो ऐसी होती है कि उसमें एक ही व्यक्ति की जगह होती है, और ये जो बड़ी जहाज है बस जब डूबने ही वाली है। वो पति पत्नी होते तो वो जो पति होता है अपने पत्नी को बाहर करता है, बाजू करता है और खुद कूद जाता है उस लाइफ बोट में, अपने आप को बचा लेता है, और वो पत्नी उसके सामने उस जहाज में आंखों के सामने डूबने लगती है और डूब जाती है। पर डूबने से पहले वो चिल्ला कर कुछ कहती है। वो प्रोफेसर सभी स्टूडेंट से पूछता है कि आप बता सकते हैं उसने क्या कहा होगा। तो एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करके कहता है, उसने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूं। और इसी तरह के बहुत सारे उत्तर अलग अलग स्टूडेंट देते। एक स्टूडेंट बहुत शांत बैठा है, प्रोफेसर पूछते हैं तुम क्या सोचते हो। वो कहता है उस महिला ने कहा होगा मैं जा रही हूं पर मेरी जो बच्ची है उसका ध्यान रखना। प्रोफेसर कहता है बहुत अच्छा सही, पर तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है क्योंकि मेरी मां भी जब मर रही थी तो जाते जाते मेरे पिताजी से उसने यही कहा था कि मैं जा रही हूं मेरे बेटे का ध्यान रखना। प्रोफेसर कहता है ठीक है बैठ जाओ। कहानी आगे बढ़ती है। वो जो बेटी है बड़ी होती है, और जैसे जैसे बड़ी होती है उसे लोगों से पता चलता है कि मेरे पिता ने क्या किया था, मेरी मां को मरते हुए छोड़ दिया था और खुद अपने आप को बचा लिया था, और जीवन पर्यंत अपने पिता से वो नफरत करती है कि ये वो आदमी है कि जिसने मुझे मेरी मां को मरने दिया। और एक दिन उसके पिता शरीर छोड़ देते हैं और वो जो लड़की होती है अपने पिता की एक डायरी उसे मिलती है और वो पढ़ने लगती है। उस डायरी से उसे पता चलता है कि उसकी मां को एक जानलेवा बीमारी थी और वो कुछ ही दिन तक जीने वाली थी, और उसके पिताजी ने लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं जीऊं, परंतु इस बच्ची की खातिर मैं तुमको छोड़ रहा हूं और खुद को बचा रहा हूं। तब वो जो कन्या होती है शी सफर्स फ्रॉम अ वेरी डीप सेंस ऑफ गिल्ट कॉन्शियसनेस, फॉर शी कुडंट अंडरस्टैंड हर फादर, एंड वेरी ऑफन इन लाइफ We make haste to come to conclusions. We jump the guns. कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जीवन की आपाधापी में और जीवन की भागम भाग में हम ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो निष्कर्ष झूठ होते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए जहां पर भी किसी भी चीज में भागदौड़ होगी, हरी होगी, तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, चाहे वो निष्कर्ष हो, चाहे वो कोई प्लानिंग हो, चाहे वो घर से निकलना हो, चाहे किसी को जज करना है, कुछ भी। यदि हम जल्दबाजी करते हैं वो करते समय, तो शायद हम गलत हैं। और वर्तमान समय हम सब की दिनचर्या ऐसी है कि जिसमें केवल भागना है और भागना है और भागना है। हर व्यक्ति ऐसा भाग रहा है, ऐसा भाग रहा है। यदि उसे पूछा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, उसके पास वो उत्तर नहीं है। वो केवल इतना कहता है कि मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि दूसरा भी भाग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ समय हम रुक जाए, कुछ समय हम अपने आप को देख ले, कुछ समय अपने मन को स्थिर कर ले, और जीवन जो अस्वस्थ हो गया है, जीवन जिसमें सब कुछ बिखर गया है, वो सब कुछ फिर से स्थिर कर दे। और ये आप सब का बहुत बड़ा भाग्य है कि आप सब इस स्थान पर पहुंचे, क्योंकि ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। संसार में हजारों तीर्थ है, पर ये वो स्थान है जहां पर असंख्य पवित्र योगी तपस्वी ब्रह्मचारी आत्माएं रहती है। इस स्थान में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि यहाँ पर कोई भी आ जाए, चाहे कितनी भी निगेटिविटी के साथ आ जाए, सम पावर एग्जिस्ट इन दिस प्लेस दैट निगेटिविटी इज गॉन, इट गेट्स वैनिश्ड। सच सेक्रोसैंक्ट लैंड दिस इज। तो सबसे पहले तो हमको लगता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, उसको यहाँ लाने वाला केवल एक बात होती है। कौन सी होगी वो? आप सब जो यहाँ आए, किसने लाया होगा आपको यहाँ? किसी बहन जी ने, किसी भाई ने, या किसी डॉक्टर ने, या किसी की सिफारिश, या किसी ने कोई सजेशन किया होगा? कौन लाया यहाँ पहुंचने के लिए? एक ही चीज की आवश्यकता है, और वो है जन जन का किया हुआ पुण्य। उसी पुण्य ने ढकेल ढकेल कर यहां तक पहुंचाया है, नहीं तो ये संभव ही नहीं है कि कोई यहां पर आ जाए। कितने लोग यहां आना चाहते हैं, परंतु एट द 11th आवर टिकट कैंसिल हो जाती है। कुछ तो है यहां, कुछ तो है। और यहाँ जो आप आए हैं, ये जीवन का ही एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ आकर जो आप अभी यहाँ बैठे हैं, वो केवल सुन नहीं रहे हैं, परंतु सुनते सुनते बहुत कुछ अंदर हो रहा है। जो वक्ता यहाँ आकर बोल रहे हैं, वो केवल स्पीकर्स नहीं है, जैसे संसार में स्पीकर्स होते हैं और जैसे संसार में कॉन्फ्रेंसेस होती है, उस तरह के ये लोग नहीं है। इनमें कुछ और है, इनमें कोई और एक पावर है, कोई एक शक्ति है, कोई दैवी संपदा इनके अंदर काम कर रही है। इसीलिए जिनको भी आप यहां सुनेंगे, उनकी वाणी में, उनके शब्दों में एक अद्भुत आकर्षण है। ऐसा लगता है जैसे इनकी वाणी इस संसार की वाणी नहीं है। और ऐसा क्यों लगता है कि सुन रहे हैं, परंतु वो आवाज आवाज से परे ले जाने वाली आवाज है? क्योंकि यहां कोई रटा रटा या कोई भाषण नहीं दे रहा। जो व्यक्ति यहां बैठ के बोल रहे हैं, वो मूर्तिमंत जीवन है, अध्यात्म है, सम टोटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोल रही है। इसीलिए शब्दों में इतना प्रवाह है, इसलिए इतना अलौकिक आकर्षण है। बिकॉज एवरी वर्ड इज फिल्ड विथ वाइब्रेशंस ऑफ प्यूरिटी, प्यूरिटी के प्रकंपन है शब्दों में, इसलिए मन शांत हो जाता है। चाहे कोई भी आ जाए, मन उसको सुनते ही शांत हो जाता है, और एक अंतर जगत की यात्रा चालू होती है। और यही यहां पर भी करना है। आज कल परसों 3 दिन है, सुनते सुनते, केवल सुनना नहीं है, साथ साथ जो अंतराल है शब्दों में, जो पॉज है दो वाक्यों में, उस अंतराल में अपने ही जीवन को देखना है कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या जीवन का यही लक्ष्य है या कुछ और। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हेल्थ समिट में एक बात कही थी कि वर्तमान समय पूरे भारत को केवल 3 ही व्याधि ने ग्रसित किया है, और वो है भागदौड़, चिंता और खानपान हरी वरी और करी। हरी अर्थात व्यक्ति भाग रहा है, सुबह फटाफट उठता है और उठते ही वो दिनचर्या चालू होती है जिसमें इतनी भाग दौड़ है कि फटाफट ब्रेकफास्ट करता है, फटाफट उसको ऑफिस पहुंचना है, फिर कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं छूटता, फिर और भागता है, ऑफिस पहुंचता है, किसी मीटिंग में पहुंचता है, पता चलता है कि मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है और वो सारी भाग दौड़, वो सारा ट्रैवलिंग एक टेंशन रहा। 2012 में यूके में एक स्टडी हुई है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये स्टडी की और उसमें पाया कि 10 मिलियन ऑफ ब्रिटिश पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस। एंड व्हाट आर दे फॉरगेटिंग? दे फॉरगेट देयर मोबाइल, दे फॉरगेट देयर कीज, दे फॉरगेट देयर पर्स, दे फॉरगेट देयर बैग्स। इनफैक्ट उस स्टडी में डिटेल बताया है कि कितने परसेंटेज लोग पर्स को भूलते हैं, कितने परसेंटेज लोग बैग को भूलते हैं, कितने परसेंटेज लोग चाबी को भूलते हैं और कहाँ। एंड इन द कंक्लूजन अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग हैज बीन सेड। इट इज सेड फ्रॉम दैट स्टडी, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेंशुअल प्लेजर, बिकॉज पीपल आर इंडल्जिंग इन एक्सेसिव सेंशुअल प्लेजर्स। और उसी स्टडी ने, एक बहुत बड़ी स्टडी है ये, उसी स्टडी ने कहा है कि नाउ वी थिंक द ट्रीटमेंट फॉर दिस इज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड वी शुड गो बैक टू इंडिया टू लर्न वॉट इज सेल्फ रिस्ट्रेंट। और हमारा जो वर्तमान का जीवन है वो ऐसा हो गया है कि जिसमें केवल भागम भाग है, व्यक्ति भाग रहा है। जल्दबाजी है, निष्कर्ष तक पहुंचने में जल्दबाजी, कुछ करने में जल्दबाजी, बोलने में जल्दबाजी, प्लानिंग में जल्दबाजी, ट्रैवलिंग में जल्दबाजी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कहा कि वो कभी विदेश गए और एक झील में किसी एक व्यक्ति के साथ नौका विहार कर रहे थे, और जब नौका विहार कर रहे थे तो वो व्यक्ति वो सारी बातें सुना रहा था जो किसी और झील की है, कि उस झील में ऐसा होता, उस झील में वैसा होता। एक घंटा वो लोगों ने नौका विहार किया, उसके बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उससे कहते, माय फ्रेंड यू हैव डेफिनेटली मिस्ड दिस लेक, क्योंकि मन सारा वहां था। जब हम यहां हैं तो वहां का सोच रहे, जब हम वहां हैं तो कहीं और का सोच रहे, एक स्थान पर हम नहीं हैं। बिकॉज ये एक एडिक्शन सा हो गया है, एक हैबिट सी बन गई है। पहले जल्दबाजी करो और फिर उसकी चिंता करो। एक बहुत सुंदर स्टैटिस्टिक्स है, वरी का स्टैटिस्टिक्स। उस स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि 40% ऑफ द वरी दैट वी हैव इज ऑल इमेजिनरी, काल्पनिक है 40%, जो है ही नहीं परंतु हम सोच रहे। जैसे एक पति पत्नी अपने दोस्त के घर जाने निकलते हैं और उनको विचार आता है कि बीच में एक ब्रिज आता है, पर वो ब्रिज तो बहुत खराब है, वो ब्रिज तो टूटने वाला है और हो सकता है वो हम चढ़ते ही वो ब्रिज टूट जाएगा। पत्नी कहती है, हाँ वो ब्रिज टूट भी सकता है, हो सकता है तुम गिरोगे और तुम्हारा फ्रैक्चर भी हो जाए। वो कहते हैं, हाँ अगर मेरा फ्रैक्चर हो गया तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा और फिर मेरी सैलरी, मेरा प्रमोशन कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है, अगर तुम मर गए तो फिर मेरा क्या होगा, और गिर के तुम मरी गए तो बच्चे और मैं हम कहाँ जाएंगे। और ये दोनों सोचते और विचार करते करते उस ब्रिज तक पहुँचते, देखते हैं गवर्नमेंट ने नया ब्रिज बना चुके हैं। वो जो डिस्कस कर रहे थे, दैट वॉज दे वर डिस्कसिंग वॉट दे हैड सीन द लास्ट टाइम, बट दे वर जस्ट कंटिन्यूइंग एंड रेविंग एंड रैंटिंग। 40% ऑफ द वरी इज इमेजिनरी, इट डजेंट एग्जिस्ट, वी हैव क्रिएटेड इट आउट ऑफ अवर, एवरी पर्सन इज अ विक्टिम ऑफ वन्स ओन कंफ्यूज्ड थिंकिंग। Every person is a victim of one's own confused thinking. 30% worry past ki hai because of wrong decisions that were taken in the past. Can we do anything regarding them? We can't do anything regarding them, and yet the mind tends to go to the past. It is such a base tendency of the mind to brood over the past. What has happened, what has not happened, why this happened, why that happened, why only me? Why this happened to me? And one is never out of this quagmire of past. 30% worry is of the past. 12% worry is the criticism that we receive from other. Why he criticized me? Why he opposed me? Why he did like this to me? What I have done? Maine aisa kya kiya? Kyun log mera virodh kar rahe? Har vyakti sochte rehta hai, aise sochte rehta hai, sochte rehta hai. Aur is study mein kaha gaya hai, ye jo 12% hai, aur jo log criticize bhi kar rahe hai, that is untrue, that is not correct. That is untrue. And yet, person is thinking about it. You know, for your information, when this institution was formed, Brahma Kumaris, 1936-37, huge opposition was there. And every new concept, every new philosophy will undergo through three stages. Sabse pehla, ridicule. People will laugh when you start with new object, new project, new idea, new organization, new religion. Second, opposition. And third, acceptance. Right now, we are at the stage of acceptance. There was a period where people used to laugh. They used to close door the moment they would see white clothes. This institution also went through all the different sort of opposition. You are seeing Brahma Baba. There was a newspaper, the Sindh Observer. In that newspaper, they maligned him like anything. They cast aspersions on him like anything. They condemned him. And there were two words that were used for him, lecherchi and sorcerer, as if he is practicing some black magic. And this man had to suffer, had to tolerate so much. But he knew, this is not my work. He knew, कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरा नहीं है, ये ऊपर परमात्मा का कार्य है, ये मेरा कार्य है ही नहीं, ये संस्था किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं है, ये स्थान किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं है, इस परिसर में, इस प्रांगण में जो कुछ हो रहा है वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा. इट इज नॉट द ह्यूमन फोर्स, इज द पावर डिवाइन, इट इज द वर्क डिवाइन दैट इज गोइंग ऑन इन दिस प्लेस, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क. Is it possible? Impossible. You get up early in the morning at 3:30, you will have tea, you will see thousands of, hundreds of institutions in the world, but not like this. I myself, throughout my MBBS, post-MBBS, there is hardly any institution in the world where I did not go. There is hardly any religion of the world which I did not go and study, because there was an increasing desire to know, to understand who is God, what is spirituality. MBBS, medical study was on one side, and on another side was the spiritual studies. Aurobindo, Ramana Maharishi, Art of Living, Chinmay Mission, Ramakrishna Mission, Divine Life Society, relative religions, comparative study of all the religions, including Islam, including Sikhism, Buddhism, Jainism, not just doing, but to follow it. That was my aim, and that was I was doing. This, as I said, throughout the MBBS, there was not a single day when I did not visit one temple, one spiritual institution, one spiritual place, one spiritual organization. I did not attend any one satsang. It was never like that. Intense search was there within me. And I would dream, right from my childhood, there is a place where there are mountains, and I am sitting there and meditating. And I did not know which is that place, and I used to feel probably Himalaya is the place where I am sitting and meditating all the time. Which is that place? I did not know. So every time I would see that recurring dream, and that was way back in 2003, when I came to this place for the first time in the same very place. There's a diamond hall just here. And there was a huge gathering there, about 15 to 20,000 people. And I sat there in the gathering for about 6 to 8 hours, crying. I did not meet a single person of this institution, or not a single senior of this institution. Even if any person of this institution would have come to me and told me that this is spirituality, this is Brahma Kumari, this is Atma, this is Paramatma, this is Paramdham, and this is the cycle, I probably would not have believed, because my mind was filled with the philosophies of the world, not just Eastern, but the Eastern and Western philosophies of the world. St. John, St. Paul, St. Bernard on one side, and Meera, Tulsidas, and Ramcharitramanas, and Bhagavat on another side, on third side, all the medical books. And I was split, not understanding what is truth, what is life, what is the ultimate truth. And nobody knew, and I kept on asking people, what is the truth? Why there is no mention of soul in Harrison? And ultimately, one day, I came to this place. And I realized, and I experienced, that this is the final destination, this is the last stop. There is no stop beyond this. So, I was telling you about criticism. 12% of the worry is because of criticism, which is untrue. 10% of the worry is because of health-related issues. But even if one is sick, and one is worrying about the illness, is he able to get rid of it? Probably not. And the study says that only 8% of the worry is real worry, and you should worry about it. But then again, the paradox is, you cannot get rid of worry by worrying. So it is 40%, 30%, 12%, 10%, and 8%. That's the statistics of the worry. Aur yadi hum apne jeevan ko dekhe aur dhoonde, कि सबसे ज्यादा मुझे चिंतित करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, तो आपको पता चलेगा वो बात एकदम व्यर्थ है, निरर्थक है. और अगले 2 दिन ऐसा सोचना है जैसे हम किसी पहाड़ पर बैठे हैं, जैसे कोई मेडिटेशन रिट्रीट चालू है, जैसे कोई तपस्या हम कर रहे हैं ऊपर बैठ कर, और वहां बैठकर अपनी सारी दिनचर्या को देखना है, अपने उस जीवन को देखना है जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो दुनिया जहां से हम इस दुनिया में आए. ये दुनिया दूसरी है, वो दुनिया दूसरी है. ये वो प्लेटफॉर्म है जहां खड़े रहकर हम अपने आप को देख सकते हैं. ये संस्था वो एक दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है. व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ. डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट फॉर सम टाइम. So worry and hurry. We keep on running, running, running and running all the time. क्या हमारी दिनचर्या ऐसी हो सकती है कि जिसमें there is a perfect equipoise, there is a perfect balance, there is perfect peace. We are doing everything. It is not that we aren't doing anything. We are karma yogis. We are doing, but our mind is so stable, mind is so calm that in spite of doing the highest of the work, we are still so calm, so utterly peaceful. I'll tell you one experience. You will go, have you seen Pandavan, Abu, Mount Abu? Yeah. So every morning we have meditation there. 3:30 it starts. 4 o'clock it starts. Some people come at 2, that's another thing. So 4 o'clock to 4:45. I remember once I was sitting in meditation there, that was early morning around 3 o'clock. And I received a call from ICU, that one patient, because Mount Abu is a tourist place, so a lot of emergencies keep on coming, and all the tourists, they sometimes get MI, sometimes stroke, sometimes or sometimes, something other. And I received a call from the duty doctor, resident doctors, a DNB student. He sent a WhatsApp. There's one patient who is very much breathless, and I think I should intubate him. I said, go ahead. But then he immediately called me. It appears it would be a very difficult intubation. And I was sitting in such a deep meditation, as if totally bodiless. And I felt, no, I have to go, because probably this resident might not be able to do it. And I had to go myself. I went, and patient was really bad, he was desaturating. immediately intubated, put on ventilator, did lines, this and that, and spent about 45 minutes there, but in total silence. You know, in critical care, when an emergency comes, what happens? You have to shout, bring this, bring that, ye karo, wo karo, aisa karo, waisa karo. But I was shocked. What? How I am managing it? I am totally calm. I am totally silent. And yet managing that emergency, I came out and I talked with the relatives that at present he is serious, but he should be all right. And I left. And again, I went back to Panda Bhavan and began my meditation. Jaise, kuch hua hi nahi beech mein. And then, 9 o'clock, meditation over. There is a spiritual class. That is over. Everything over. And then we went for our rounds. As if I had forgotten everything, what has happened. And then when I went inside, the patient was awake, though intubated. And the relatives were all coming and falling at the feet. Oh, Dr. Saab, Dr. Saab. I was just wondering, what was this? This was absolutely a neutral karma. A karma tha. Main kar raha tha, par kuch bhi nahi kar raha tha. Itna detachment. Aisa nahi ki nahi kar raha tha. Chalu tha. Sab kuch chalu tha. Aisa nahi ki efficiency was reduced. No, it was perfect efficient. But as if some spiritual power was operating. And I understood a new secret of life. Even this is possible. There is no need to shout. There is no need to shout in the time of emergencies. If one can remain calm in such emergencies, what about the life conditions? What about the life situations? One can remain absolutely calm. Absolutely stable. It's only that we are addicted to hurry, worry. So again, 2 minute ke liye meditation mein baithenge, sabhi alert hoke baithenge. Sharir ki sari halchal samapt. Sansar ki sabhi baaton se man ko ekagra kar denge. सभी संसारिक बातों से परे संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह आवाज की दुनिया से परे संसार की भीड़ से परे मैं जीवन के अनंत सागर में चैतन्य की एक लहर हूं देख रहा हूं यहीं से अपनी दिनचर्या को कितने बजे उठता हूं उठते ही क्या करता हूं किसको याद करता हूं क्या पढ़ता हूं क्या सोचता हूं देख रहा हूं खुद को भोजन करते हुए हाउ डू आई टेक माय ब्रेकफास्ट I see myself traveling. How do I travel? What are my routine thoughts? I see the scenario of my clinic, my hospital. How do I see patients? Is there a touch of compassion? Is there the feeling of love? Is there a sense of service? Or I have become out and out businessman? Let me see myself. Apni vyast dincharya ko dekh raha hu. Kya mera man shant rehta hai? Aur yadi nahi to kyun? किसने छीन ली है ये शांति मौन, सुबह से लेके रात तक आवाज आवाज। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ पल मैं केवल अपने साथ गुजारूं एक परम मौन में। लेट मी प्लान, लेट मी थिंक, लेट मी रिफ्लेक्ट, लेट मी कोजिटेट अ डीप कॉन्टेम्पलेशन, एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द माइंड हैज बिकम पैसिफिक एज इफ सम अनरफल्ड पीस हैज डिसेंडेड अपॉन मी। Why this life is so rattled? Why I am so distraught? क्यों ये असंतोष, क्यों ये बेचैनी? पर्वतों के शिखर पर बैठकर मैं अपने ही जीवन को देख रहा, आबू की वादियों में स्थित मैं यहां से देख पा रहा हूं कहां गड़बड़ है। क्यों संबंधों में ऐसी कड़वाहट, क्यों मन में ऐसी घृणा है, क्यों इस रिश्तों में ये दूरियां, क्यों ये संताप, क्यों ये कलह। इस छोटे से चिंतन ने ही मन को शांत कर दिया है, एकाग्र कर दिया है। ओम शांति। द मोर द हेल्दी वी बिकम, सारी मनुष्य जाति हैज बिकम सिक। दिस सिक मेंटालिटी हैज रिजन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डाइट। एज अ डॉक्टर वी नो व्हाट टू ईट एंड वी डू एडवाइज पीपल ईट दिस और ईट दैट, बट इन फैक्ट व्हाट इज द रियल डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? If you study in depth, you will come to know that we have moved away from nature, and the more we move away from nature, the more we suffer. That's why a lot of oily things, a lot of curry things has led to acidity, GRD and multiple things. I'm not here to give a lecture on medical aspect of curry, which you know more than anybody. But I'm going to tell you few principles of eating. First principle, hungerless eating. भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे, भूख है नहीं फिर भी खा रहे, और शायद मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो भूख नहीं होता है तो भी खाता है, बाकी कोई नहीं खाते। One, second, over eating. If you see the statistics of the world, it is not because of under-eating but because of over-eating that the humanity is suffering. Third, wrong type of food. It is the journey from non-vegetarian diet to vegetarian diet. It's a journey from vegetarian diet to plant-based diet, vegan. It's a journey from plant-based diet gradually towards uncooked, gradually towards raw. I myself, from last 4 years, I have not taken anything which is touched by fire. Touched by fire. Fire means cooked. And the more we move towards nature, your body will undergo change. The whole system will undergo change. You will realize the deepest secret of health, which we never knew before. And this is a huge concept which is coming up and being followed at many places in the world. And people are getting aware of it. And if you want to really come to the perfect health, you will have to come to the natural diet. You will have to come to the raw diet. You will have to come to the diet which is, at least begin this journey now, 80% of the diet which we take or 70%. Let it consist of fruits, let it consist of salads, let it consist of green, let it consist of all the healthy vegetables which are available in the world. And the more you take healthy diet, you will undergo, I am not just telling this for the sake of body, but your mind will enter a stage where you remain active all the time, where you remain full of energy all the time, where a new stamina, new energy will come up. Because by eating dead, we become dead. By eating live, we become live. So this is a new concept, though not very new, but know well that man has just scratched the surface of science. What we know about science is very little. Gradually, entire humanity has to come towards natural diet. And one more thing, diet change should never be made a revolution, but it should be an evolution. Gradually, according to what suits your body, begin. And you have to begin this journey one day. And everybody's journey is alone. One is alone in this journey of diet. If you study Mahatma Gandhi's literature, at multiple times he is mentioning about control of palate. When he was in South Africa, he had written a lot of things about diet. When he came in India, a lot of articles are there on diet. And he has said, a diet of a yogi, a diet of a person who wants to become totally free from disease should be as much without salt, as much without spices, as much without oil. I myself have not taken any oil from so many years, no salt from so many years, and my recent blood reports absolutely normal. Absolutely normal, just few days back. And I started this not because I was sick, because I was in search of a diet which would make me totally healthy, not bodily health. I had that health before also, but I wanted to enter the stage of spirituality where you can see things as things are. And that higher level of clarity comes only when the light diet becomes light, your mind becomes light. When the diet becomes as if you are eating, but you are not eating. You feel intense energy within you, and that will come when this curry thing, when this curry business will go away. So type of food. Another thing about diet is how we are eating. Are we eating with complaint, with displeasure, with discontent? How are we eating? How are we consuming our food? असंतोष से खा रहे हैं या खुशी खुशी से खा रहे हैं? भोजन करना एक प्रार्थना है, एक तपस्या है. उसको इतने प्यार से स्वीकार करना है क्योंकि वो भोजन ही जाकर मन बन रहा है. व्हाट यू ईट यू बिकम. जैसा अन्न वैसा मन. यहाँ का भोजन आपने देखा है, उसमें प्यूरिटी के वाइब्रेशंस है, क्योंकि जो लोग भोजन बना रहे हैं, दे आर लीडिंग एन एक्सट्रीमली प्योर लाइफ एंड दे आर फ्री फ्रॉम एनी एडिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड. There was a medical conference here long time back, and one head of the department had come. But he said that I will smoke. I will come to Shantivan only on this condition, ki mujhe smoking chahiye. To jo sister thi Brahma Kumari, usne kaha ki theek hai, jab aapko ichha hui to mujhe bol dena, main gate ke bahar le jaungi do number aur aapko jo karna hai karna. To wo doctor sahab aaye aur इनॉग्रेशन सेशन हुआ शाम को. ही सेड आई वॉन्ट. तो वो लेके गई बहन गेट नंबर 2 के बाहर, और उन्होंने स्मोकिंग और अंदर. दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन हुआ 4 बजे. मेडिटेशन के बाद में ब्रेकफास्ट, उसके बाद में 1-2 सेशन. बीच में उन्होंने फिर कहा स्मोकिंग, बहन लेके गई. पूरा दिन मेडिटेशन सेशंस चले. दूसरा दिन वापस मेडिटेशन हुआ. अब उनकी हिम्मत नहीं हुई. अब उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की. तो ऐसे ही एक सेशन में बैठते बैठे मौन क्रांति हो गई अंदर, अ साइलेंट रिवॉल्यूशन. और वहीं बैठे बैठे ही संकल्प कर लिया, एक प्रतिज्ञा कि आज इसी वक्त अभी छोड़ता हूं, और छोड़ ही दिया हमेशा के लिए. किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं. वो बहन ने तो कहा था कि जब लगे तुमको अब मुझे बताना, मैं ले जाऊंगी बाहर. जो परिवर्तन होता है जीवन में, किसी के कहने से नहीं होता है. और एक बात, यदि बहुत शक्तिशाली भाषण सुनना है, एक बहुत इंस्पायरिंग टॉक सुननी है, तो शायद आप उन लोगों से नहीं सुनेंगे जो यहां बैठ के आपको सुनाएंगे। ये जो इतना बड़ा परिसर है, किसी भी एक डिपार्टमेंट में जाइए, वहां शायद कोई एक अनपढ़ माता है जो भोजन बना रही है, कोई एक भाई है उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि ये कॉन्फ्रेंस चालू है, उसको जाकर केवल एक ही प्रश्न पूछो कि भाई ए माता तू ये बता तुम यहां कैसे आ गई, जस्ट टेल मी व्हाई यू केम हियर एंड ही विल गिव यू अ परफेक्ट अ सच आंसर एंड दैट आंसर विल बी द ग्रेटेस्ट आंसर यू हैव ग्रेटेस्ट स्पीच यू हैव एवर हर्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस दैट विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी बिकॉज वॉट ही विल टेल विल बी एन एक्सपीरियंस क्या उसके जीवन में हुआ और कैसे वो इस तक या इस संस्था तक पहुंच गया। वो जो कुछ बताएगा वो कोई भाषण नहीं होगा, वो रियल स्पीच रियल इंस्पायरिंग वर्ड्स होंगे और उसी ने कितनों को परिवर्तन कर दिया है। हमको याद है एक मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है उधर, एक ऐसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक HOD आए थे और वहां से यहां आना था मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स से यहां ट्रांसपोर्ट तक, तो वहां गाड़ी चली गई तो एक भाई यहाँ का शांतिवन का, उसे क्या पता, उसने कहा अपनी साइकिल ली और कहा बैठो इसमें, सामने के दंडे में बिठाया उसको और लेके आया और वो इतना खुश हुआ इतना खुश हुआ, वो कहते कि पीपल फियर मी इन माय डिपार्टमेंट एंड दिस मैन इज सो अनअफ्रेड एंड ही इज सो हैप्पी एंड सो जॉली। वो दंडे पे बिठा के उसको लेके आया और वो इतने खुश हो गए और इतने परिवर्तित हो गए। उसने कुछ ज्ञान नहीं सुना है, उसको तो ज्ञान भी नहीं सुनाने आता है, ज्ञान सुनाने वाले तो गिने चुने हैं जो भाषण दे सकते हैं, पर यहां तो जीवन है मूर्तिमंत, उस जीवन में ऐसी शक्ति है कि उसको केवल देख के ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। शायद कोई वहां बैठा है दूर, वो कोई प्रश्न नहीं पूछता कुछ नहीं पूछता, और दूसरे हैं बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, सबसे ज्यादा शायद उसी को फायदा हुआ जो आके बैठा चुपचाप कुछ नहीं पूछा और जीवन ही परिवर्तित हो गया यहाँ के वातावरण मात्र से। तो ये तीनों ही चीजें हरी वरी और करी, अपने आप को शांत करना है, स्थिर करना है, एकाग्र करना है, अपने आप को देखना है, माफ कर देना कईयों को, भूल जाना बहुत सारी बातें जो जीवन में हुई जो कड़वाहट से भरी है और दर्दनाक है, और जीवन में एक नया आयाम जैसे कि ये कोई एक शुरुआत है ये लेना। तो फिर से एक बार अलर्ट होके बैठेंगे, लास्ट मेडिटेशन। हे मन तू बहुत भाग लिया, हे मेरे मन अब समय है स्थिर होने का, हे मेरी बुद्धि शांत हो जा, एक मौन तुझे पुकार रहा है, एक एकांत तुझे पुकार रहा है, एक परिवर्तन जीवन का परिवर्तन। बंधनों में बहुत रह लिया, इनफ ऑफ द इमोशनल स्लेवरी, नाउ आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द वास्ट फर्मामेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इनफ ऑफ द केज, इनफ ऑफ द बॉन्डेज, इनफ ऑफ द बार्स, इनफ ऑफ द चेन्स, द वास्ट स्काई is invoking me, I have received the wings of enthusiasm, zeal, I have received the wings of new understanding, new knowledge, the wings of experience, let me scale new heights, let me understand the ununderstandable, let me feel the impalpable, let me feel the unfelt, let me see the invisible, perfect stillness within, a long drawn out silence, main atma देख रही हूँ स्वयं को, संसार के सभी बंधनों से पार आकाश में उड़ता परिंदा, नए पर मिले हैं चेतना के, समझ के, स्मृति के, उमंग के, उत्साह के, ज्ञान के, अध्यात्म के, खोज करनी है मुझे। जीवन के सत्य की, जीवन के उद्देश्य की, आकाश में उड़ता मैं परिंदा।
लड़े हम वो खुद से बेहतर लेके